السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. دو دریا جاری تھے، ایک ادھر بیٹھے ہیں محدث صاحب اور ایک یہ، دونوں وہی بولنے لگا. یہ رحمت کے دریا جاری تھے، مرج البحرین اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان کے منہ سے موتی اور مونگا، یہ دو اہم خزانے کے دریا کے خزانے ہیں. ان دونوں دریائے رحمت نے اسے لٹھایا دیا، آپ نے اپنے دامن عقیدت میں سمیٹا، اب اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ ہے. جوہری آپ کو جوہر دے کے جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا لینے والے پر، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دریا نے موتی مونگے بنائے، غواص نے نکالا اور مارکیٹ میں بیچ دیا، اب آپ نے خرید لیا، اب اسے نالی میں پھینک رہے ہیں یا اس کو اپنے تاج کی زینت بنا رہے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی. یہ علماء صرف اتنا کرتے ہیں، اور میں تو ایک چھوٹا موٹا عالموں کا خادم ہوں، نہ علم ہے نہ فضل ہے، انہی حضرات سے سیکھا ہے. من آنم کی من دانم. میرے دوستو، میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، اور در لولو در بہا در بے بہا دیے ہیں. اس میں شاعرانہ جو چاشنی ہے وہ تو شاعر لوگ جانے، ہم لوگ تو خالی ہدایت بخشش پڑھ کر کے سبحان اللہ کہنے والوں میں سے ہیں. لیکن میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اعلی حضرت فرماتے ہیں، میرے کریم سے گز قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. قطرہ مانگا، قطرہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پانی کا ہوتا ہے نا، اس کی مناسبت سے دریا. سائل نے قطرہ مانگا تو مصطفیٰ نے ایک گلاس، ایک گھڑا، ایک درام نہیں دیا، دریا بہا دیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے. چلیے قطرہ مانگا، وہ بھی پانی، یہ بھی پانی. اب اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے، فرماتے صرف قطرہ مانگنے والے کو دریا ہی نہیں دیا، دریا کا پورا خزانہ دے دیا، در بے بہا دیے ہیں. در کہتے ہیں لولو اور موتی کو، اب بے بہا کہتے ہیں بیش قیمت، جس کی کوئی قیمت نہیں. ایسے قیمتی قیمتی موتی ان سائلوں کے دامن سوال میں میرے مصطفیٰ کے جود و سخا نے ڈال دیا. واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. अब मुझे ये बताना है ये दुर्रे बेबहा यखरजो मिनहुमल लूलू वल मरजान, ये लूलू और मोती इसका कुदरती पैदाइश का प्रोसीजर क्या है, कैसे पैदा होते हैं। सीप तो आप लोग जानते हैं, मैं अभी तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर थोड़ी सी गुलकारी कर रहा हूं। सीप ये दो हड्डी जैसी चीज होती है और वो यूं ही इस तरह से मिली हुई है, अगर उसको आप ऐसे कर दें तो वो कश्ती नुमा नजर आती है और मिल जाए तो वो सीप है, वो मुर्दा नहीं है, जिंदा होती है, अंदर उसके दिल है, आंत है, लीवर है, सारी जिंदगी के सिस्टम रब ने उस हड्डी के अंदर पैदा कर दिया। वो सीप रहती कहां है, समुन्दर की सतह में रहती है। साल में एक मौसम आता है जिसको हिंदी में कहते हैं सेवाती, और पर्शियन में फारसी में कहते हैं नीसा। जब अबरे नीसा छाता है, सेवाती का मौसम आता है, तो उन सीपों के दिलों में कुदरती तौर पर हैजान पैदा होता है, ख्वाहिशात का समुन्दर उसमें उमड़ता है, और वो सीप सेवाती का पानी ढूंढने के लिए सतह समुन्दर पर तैरती रहती है। और जब अबरे नीसा छाता है और रिमझिम बरसता है तो ये सीप अपना मुंह खोल देती है, और जब ये अपना मुंह खोलती है तो कतरा, दो कतरा, तीन कतरा, जिसके नसीब में जितना है उतना आता है। जैसे ही वो कतरा अपने नसीब का अपने अंदर महसूस करती है, फौरन वो अपना मुंह बंद कर लेती है। ये अबरे नीसा की अमीन है, ये उसकी अब हिफाजत करेगी, अब मुंह खोलेगी नहीं, मुंह बंद करके सतह समुन्दर के नीचे जाकर के वो इत्मीनान से बैठ जाती है, और जो उसमें एक ख्वाहिश और हैजान पैदा हुआ था उस अबरे नीसा से उसको तस्कीन मिल जाती। बड़े इत्मीनान से जहां से आई थी वहां वो सीप बैठ गई। अब कुदरती प्रोसीजर और सिस्टम ये है कि वो पानी के चंद कतरे आहिस्ता आहिस्ता गाढ़े बनते जाते हैं और फिर उसमें सलाबत पैदा होती है। मैंने गाढ़ा लफ्ज बोल दिया, सलाबत के माने सख्ती। मैं आमतौर से गाढ़े अल्फाज नहीं बोलता, वो तो ये बोलते हैं बहुत गाढ़े गाढ़े। उस पानी के अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है और फिर वो पत्थर की तरह सख्त होने लगता है और उसका शेप जो होता है वो राउंड होता है, वो एक पत्थर की शक्ल में हो जाता है और फिर उसका कलर चेंज होता है, बहुत चमकदार सफेद व्हाइट कलर का होता है, उसको लूलू कहते हैं, वो दरिया में पैदा होता है। ये ऐसे कीमती मोती होते हैं कि जो बड़े साइज के होते हैं, करोड़ों रुपया एक मोती का दाम होता है, उसे ऐरे गैरे कुछ नहीं खरीद सकते हैं। बड़े बड़े बादशाह अपना खजाना खोलते हैं तो एक एक मोती वो खरीद कर अपने ताज की जीनत बनाते हैं, और जिसे वो असली मोती मिल जाता है वो अपने खजाने पर नाज करता है, इतने ग्राम का, इतने करेट का मोती मेरे यहां है, मेरे यहां है। ये मोती बड़ा कीमती होता है और इसकी कदर या तो बादशाह जानता है या जौहरी जानता है, दो ही उसके कदरदान है। किसी शायर ने कहा है, कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, या तो बादशाह उसकी कद्र जानता है या जौहरी हार में जो मोती है इसकी कद्र सिर्फ हम जानते हैं। हम समझते हैं बहुत कीमती हार है, लेकिन असली मोती की कीमत और कद्र जौहरी जानता है या फिर बादशाह जानता है। मैंने उसमें एक और मिसरा बतौरे मजाहिया लगा दिया, कदरे थप्पड़ हाथ दाना या बदानत खोपड़ी, कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, और कदरे थप्पड़ हाथ दाना या बदानत। जब किसी को जोरदार जन्नाटे का थप्पड़ आप मारें, अब उसको लगी कि नहीं लगी हाथ से पूछो, झनझन झनझन पहले ये करता, और उसको लगी तो खोपड़ी से पूछो ये मार कैसी थी। मेरे दोस्तों, गौहर और लूलू जिसको हम अपनी जबान में मोती कहते हैं, उसकी कद्र या तो बादशाह जानता है या जौहरी जानता है। ये मैंने तमहीद क्यों मानी, आला हजरत का शेर भी समझाना था, मेरे करीम से डर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं और दुर्बे बहा दिए हैं, उसके दामन में खजाना भर दिया। अभी उसकी तशरीह यहीं रोक देता हूं, ये तो और भी शेर मेरे सामने रख रहे थे। अब ये जो बच्चे हैं ये दुर्रे बेबहा हैं, दरिया की सीप में सेवाती का पानी आकर परवरिश पाकर लूलू और मोती बन गया, दुर्रे बेबहा बन गया, और जामे अहले सुन्नत सादकुल उलूम के सीप में सेवाती का पानी नहीं है, ये तुख्मे बशर है जिसको रब ने कहा वलकद खलकनल इंसान फी अहसन तक्वीम, इंसान को हमने बड़ी खूबसूरत सूरत में पैदा किया। जाहिर को भी रब ने तारीफ के जरिए उसको ऐलान फरमाया और बातिन को भी इरशाद फरमाया वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को करामतों बुजुर्गी का मरकज बना दिया है। ये बातिन में भी अच्छा था और जाहिर में भी अच्छा है, इन दोनों खूबसूरतियों का जिक्र खालिक कायनात ने फरमाया। सेवाती का पानी तो पानी था, नालियों में बह जाता, कोई कदर कीमत नहीं थी, लेकिन ये वो पानी है जो इंसान की रीढ़ से निकला है। रब इरशाद फरमाता है कि वलकद खलकनल इंसान هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا। ये इंसान का एक कतरा पानी था जो इस्माइल के बुर्जों से मुंतकिल होता हुआ रहम मादर की सीप में पहुंचा और वहां 9 महीने परवरिश पाया है। ये सीप का दुर्रे मकनून नहीं है, ये वो मोती है जो कुदरत ने मां के पेट में रहम की शक्ल सीप की शक्ल में रखा है, वहां से ये निकला है। आप इसकी कद्र करें ना करें, मैं बाजारे कयामत में इनकी कद्र तुम क्या करोगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, इन पक्के मोमिनीन को रब ने खरीदा है, इसके खरीदार मुस्तफा होंगे, इनको सीने से लगाने वाले गौसो खाजा और शहनशाह नाजिक नासिक होंगे, औलियाए किराम होंगे, इनकी कदर हम क्या जानेंगे। कदरे शौहर कदरे गौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी, हम जैसे फुटपाथ छाप लोगों को इनकी कदर क्या होगी। खुदा की कसम सदर साहब सिक्रेटरी साहब उलमाए किराम, हम आपकी करामतों को सलाम करते हैं। ये आए थे बिहार से यूपी से इधर और उधर से आए थे, एक कतरा बन के आए थे, इनको आपने जाने के सीट में रख करके इनकी परवरिश आपने की है, सीट में नहीं की है। आज वो दुर्रे बेबहा अपने सरों पर चमकते ताज रखकर कौम के आंखों को खीरा कर रहे हैं, दिल को नूर अता कर रहे हैं, और इनकी कीमत तुम नहीं लगाओगे। रब्बुल आलमीन इनके पूरा
नारे तकबीर नारे रिसाला अशरफुल फुकहा जश्ने दस्तारबंदी।
एक मोती नहीं, कितने हैं भूल गए जी? 19 के 19 7 कारी 3 हाफिज 19। हाँ, ये 19 हैं जिनको आपने 10 तार, ये 10 तार नहीं है हजारों तार, लेकिन नाम रखा हमारे बुजुर्गों 10 तार, समझे। बुजुर्गों ने जो नाम जिसको दे दिया है सही दे दिया। ये दे दिया, इसका नाम क्या रखा बुजुर्गों ने? आप हारने वाले को पहनाते हैं क्या? किसको पहनाते हैं? जो मुंह लटकाकर वोट की गिनती के बाद घर फुट फुट जा रहा है उसको आप हार पहनाते? अरे जो हंसता कूदता जाता है जीत गया है उसको आप पहनाते? इसका नाम तो फतेह सिंह रखना चाहिए। फतेह सिंह थे बन गए हार, क्यों हार बना, क्यों हार बना? ये अपने मरकज से हट गया। एक झाड़ था उसकी टहनी पे इसके फूल थे, गर्म गर्म धूप में जल रहा था लेकिन शादाब था, तरोताजा था। आंधियां अपने गर्दो गुबार इसके मुंह पर उडेल रही थी, तरोताजा था। इसकी जिंदगी बाकी थी लेकिन जालिम गुलची ने एक दिन उसको टहनियों से अपने मादरे वतन से अलग कर दिया, अपने मरकज से हटा दिया। तो जो जमीन इसको रस पिला रही थी, टहनियों के जरिए दूध मिल रहा था, उसी दिन से उसकी सप्लाई खत्म हो गई। अब ये आया तो जरूर है स्टेज पर, ये थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसको बकरियां खाएंगी, बाहर फेंक दिया जाएगा, चेहरा काला सुबह तक होने लगेगा। ये मरकज से हट गया, जो गैस सप्लाई हो रहा था वो कट गया। ये इसलिए हार है, जिंदगी की बाजी हार गया है, और ये फतेह सिंह इसका नाम नहीं रखा गया है। इसी तरह से हमारे बुजुर्गों ने क्या बोला, 10 तार। हाँ, ऐसे जरा लुकमा दिया कीजिए, 84 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। 10 तार, तो हमारे बुजुर्गों ने हजार तार का नाम 10 तार रखा है। वो कुरान मजीद की आयत करीमा से इस्तेफादा किया है। अल्लाह ताला फरमाता है तिलका अशरतुम कामिला, ये 10 ये मुकम्मल अदद बन गया, सब इकाई थे दहाई, 10 में बनाया, एक इकाई दो इकाई तीन इकाई चार इकाई पांच इकाई, नाम बदलते चले जा रहे हैं, इकाई इकाई है, और 10 तक आया तो बस। अब यहाँ एक एक को मिलाओ तो 11, एक और दो को मिलाओ तो 12, अब वही इकाइयों से आप एक एक عدد لیتے جائیے دوسرے سے ملاتے جائیے تو ہزار لاکھ سنکھ مہاسنکھ یہ سب انہی ایک دو تین سے بنیں گے. اکائیاں تھی نو تک اور دس نے اسے مکمل کر دیا. میرے دوستو ابھی یہ نو ہیں, نو ہیں ابھی اکائی ہیں. دنیا میں جب تک دس نہیں آتا ہے بس نہیں ہوتا, لیکن اسلام نو ہے, لیکن اسلام نے نو کو بھی مکمل فرما دیا. ایک ہے وہ بھی دہائی ہے, دو ہے وہ بھی دہائی ہے, اور بیس ہے وہ بھی دہائی ہے. تل کا عشرۃ کاملہ, یہ ہے دس تار اور یہ ہے موتی. ان کو ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ بچے پڑھنے کے زمانے میں بڑے شریر ہوتے ہیں, جتنے علماء ہیں معافی کے ساتھ, آپ لوگ پڑھتے تھے تو کیسے تھے, ہم بھی اسی میں شامل. اراکین میں سے جس سے تھوڑی تکلیف ہو جائے تو اس کا نیا نام رکھ دیتے تھے. مدرسین میں پٹائی کیا تو جا کر کے بولتے یہ ہمارے مولانا فلاں نام, اصلی نام نہیں لیتے تھے, اپنے اندر مذاق بنانے کے لیے سب کے الگ الگ نام رکھتے تھے. یہ پورے مدرسوں کی فطرت ہے اور آج تک ہے, بعد میں کتنا بڑا بھی ولی اور محدث بن گیا ہو لیکن اس فطرت سے کوئی بچا نہیں. ایک واقعہ ہے پرانے زمانے کا, ایک نواب صاحب تھے, ان کی ریاست میں ایک مدرسہ چلتا تھا. نواب صاحب کے دل میں آیا کہ مدرسے کے سب بچوں کی خدمت, کھانا پینا کپڑا اوڑھنا علاج سب میں کروں گا, دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اور نیک بخت وہ آدمی روزانہ کھانا پکوا کر مدرسے میں لے کر آتا, اپنے سامنے سب بچوں کو کھلاتا. ایک سال نہیں کئی سالوں تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک دن صبح ناشتے کے وقت بارش بہت ہوئی تھی. اب نواب صاحب اس بارش میں آنے میں انہوں نے تاخیر کر دی اور بچوں کو ناشتے کی بھوک لگی تھی. تو کچھ بچوں نے کہا وہ بیل ابھی تک نہیں آیا. نواب کو کیا کہتے بیل, ارے بیل ابھی تک نہیں آیا اتنی بھوک لگی, چھ سات سال خدمت کیا اور ایک دن تکلیف پہنچی تو اس کا نام کیا رکھ دیا بہل. اتنے میں نواب صاحب پائجامہ چڑھائے ہوئے اپنے نوکروں کے ساتھ ناشتہ لے کر آ رہے تھے تو ایک نے چلا کیا دیکھو بیل آ گیا, بیل آ گیا. نواب صاحب نے سن لیا, نوابی رگ کی پھڑ گئی, یہ کمبخت اتنی خدمت کے بعد مجھے بیل کہتے. وہیں سے چہرہ سو آئے اور سب کھانے پینے کا برتن غصے میں رکھ دیا اور صدر مدبی صاحب اور محتمین صاحب دونوں بیٹھے تھے, کہا یہ اپنا بچوں کا کھانا لیجیے, آج سے کام پکڑتا ہوں, اب ان کی خدمت نہیں کروں. وہ لوگ سمجھا رہے ہیں نواب صاحب کیا ہو گیا, کچھ نہیں بگڑے جا رہے ہیں آپے سے باہر, پیجامے سے باہر. سمجھا کر صدر مدرس صاحب تنگ آ گئے. پوری حدیث بھی اگر پڑھ دیتے تب بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اتنے غصے میں تھے. کہا کیا ہو گیا, کیا ہوا, یہی بچوں کو سکھایا ہے, اتنے دن سے خدمت کرتا ہوں اور مجھے بیٹھ کہتے. چلے گئے گھر پر بھی ٹینشن میں, میرا سب کیا گھرا پانی ہو گیا, عشاء کی نماز پڑھ کر کے ٹینشن میں کروٹ بدل رہے تھے. نیند آ گئی اور نیند جب آ گئی تو خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر تھا, سب لوگ حساب کے دار و دیر کی کشمکش میں مبتلا ہے, اس میں نواب صاحب بھی. یہ بچے جن کو مدرسے میں یہ کھانا کھلاتے تھے, دیکھا کہ یہ بچے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے ارشاد فرمایا بچو تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا, چلو بے حساب کتاب جنت میں چلو. تو وہاں بھی اچھلتے کودتے سب پھل سراب تک آ گئے, چلو چھٹی ہو گئی, ہمارا حساب کتاب نہیں ہوا, چلو جنت میں. جب
पुल सराज के करीब आए तो एक लड़के ने कहा यार हमारा बैल नजर नहीं आता। यार इतनी हिम्मत की है और ये बैल नजर नहीं आता, बोले चलो तलाश करें जब बैल को साथ जंगल में लेके जाए।
अब ये सब गए बनाए बगैर जन्नत में जाने के, खाप में ना आप साथ देख रहे हैं ये अपने बैल को तलाश कर रहे हैं। जब वो मिल जाते एक नकार वो हमारा बैल खड़ा, तो वहां गए उसका हाथ पकड़ा और कहा चलिए आपने हमको खिलाया पिलाया हम जन्नत में जा रहे हैं, काहे का हिसाब के तरफ चलो हमारे बैल को लेकर जन्नत में जाए। महाराज साहब का सब टेंशन खत्म हो गया, कहां खुल गई देखा अपने घर में और रोने लगे, इतना रोए कि उनकी हिस्सी तौबा की। इन बच्चों के इस गिरे हुए जुमले से मैं नाराज हुआ और मैंने अपना अंजाम और इन बच्चों की खैरखाही का अंदाज सब देख लिया। वहां पर भी ये बच्चे उन्होंने बैल कहके मुझे दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। ये बच्चे बैल नहीं मुझे गधा भी कहें तो अब मुझे मंजूर है, इसलिए कि इनके गिरे हुए डायलॉग और इनके घटिया अल्फाज भी मेरी निजात का जरिया बन गया। हा कदरू या वलील अफसा, ऐ आंख वालों आंख खोलो, पता चलेगा बच्चे अगर आपस में भीजा मुश्ती और मजाक मस्ती करते हैं तो सेठ लोग एतराज करते हैं ये बच्चे ऐसा है मौलाना लोगों ने इनको ऐसा ही पढ़ाया, तुमको गाली तो नहीं दिया, वहां तो बैल कहा, बैल कहने को बुरा समझने वाला मालदार मैदान महशर में अपना हश्र देख रहा है और बच्चों का अंदाज देख रहा है, तौबा कर ली। खुदा की कसम है पैसे रावा लो ऐ मालदारो, ये तुम्हें अगर बुरा कहें तो समझ जाओ बर्दाश्त कर लिया और इनके घटिया मजाक को तुमने झेल लिया, इंशाअल्लाह मैदान महशर में तुम्हारे लिए निजात का जरिया होगा।
नारे रिसालत हुजूर अशरफुल उलमा खलीफा हुजूर मुफ्ती आलम ही,
ये सादिकुल उलूम के सीप से निकले हुए वो मोती, इनकी कदर करो कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, और थप्पड़ पड़ेगा तो कदरे थप्पड़ हाथ दाना या बदानत खोपड़ी, अजाब का थप्पड़ खाने के लिए तैयार मत हो। इन मोतियों की कदर करके और तुमने सीने से लगाया तो ये इनके माँ बाप को रब मोतियों का नहीं नूर का ताज कयामत में पहना कर दुनिया को बताया कि ये मोती मरज अल बहरैन अल तक्याम यखरुजो मिन्हुम अल्लूलू वल मरजान। अल्लाह ताला इन मोतियों की कदर करने वाले अफराद को पैदा कर दे और इनकी इज्जत करोगे मैदान महशर में तुम्हारी इज्जत होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।